पृष्ठ संख्या 287, अध्याय 30, महत्वपूर्ण ताल, ठेके, गिनी चुनी रचनाएं और उनका विश्लेषण। ताल और ठेके। ताल के विषय में शास्त्रीय विवेचन इसके पूर्व विविध अध्यायों में हो चुका है। मानव की संस्कृति प्रगति की यात्रा में ताल का भी विकास होता आया है। सुख, आनंद इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए जो गीत नृत्यादि संगीत प्रकार पैदा हुए, वे शुरू में प्रायः दो और तीन मात्राओं के छंदों के माध्यम से व्यक्त किए जाते होंगे। जैसे जैसे गीत नृत्यादि के प्रस्तुतीकरण का तंत्र विकसित हुआ, वैसे ही वैसे छंदों में से ताल संकल्पना निर्माण होकर विकसित हुई होगी। ताल को पहले ताली द्वारा व्यक्त करने की पद्धति प्रचलित थी। तालों का उद्देश्य गायन नृत्य क्रिया को नियोजित मात्राओं की लय के घेरे में प्रस्तुत करने में मदद करना, मार्गदर्शन करना था। सातवीं शती के आसपास विकसित ये ताल दो भागों में विभाजित हुए थे। पहला मार्गी संगीत के लिए मार्गी ताल और देशी संगीत के लिए देशी ताल। मार्गी संगीत में मार्गी तालों का स्वरूप। भरत एवं सारंग देव के काल में मार्गी तालों का स्वरूप कैसा था, इस बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि मार्गी संगीत और मार्गी ताल काल के उदर में लुप्त हो गए हैं। इस पार्श्वभूमि पर दश प्राण विषय का अध्ययन करते समय मेरे सामने कुछ प्रश्न उपस्थित हुए और उपलब्ध जानकारी के सहारे एवं तर्कशास्त्र की सहायता से उन प्रश्नों को हल करते समय कुछ आश्चर्यजनक सादे एवं सुखद उत्तर मुझे प्राप्त हुए। तद विषयक चर्चा नीचे की गई है। विविध प्राचीन ग्रंथों में मार्गी संगीत और मार्गी ताल के विषय में निम्नांकित जानकारी उपलब्ध होती है। पहला, उस जमाने में ताल शास्त्र बहुत ही प्रगत अवस्था को पहुंचा था। ताल की गणन पद्धति अत्यंत सूक्ष्म काल का भी हिसाब रख सकती थी। काल गणना का काम अचूकता के साथ संपन्न करने के लिए विविध सशब्द एवं निःशब्द क्रियाएं निर्माण हुई थी और वे किसी भी लय को पक्केपन के साथ दर्शाने के लिए प्रगत होकर प्रचलित भी हो गई थी। इस पार्श्वभूमि पर मार्गी संगीत के प्रस्तुतीकरण में मार्गी ताल अत्यंत लयबद्ध रूप में कुशलता के साथ काम करते रहे हों, ऐसा निष्कर्ष विशेषतः ताल के दश प्राण शीर्षक अध्याय पढ़ने पर प्राप्त होगा। पृष्ठ संख्या 288। दूसरा, मार्गी संगीत देशी संगीत की तुलना में अधिक उच्च स्तर का रहा होगा, क्योंकि वह मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, परमेश्वर प्राप्ति, आत्मिक विकास के लिए गाया जाता था, ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है। तीसरा, कुछ ग्रंथों में मार्गी तालों का गणन करने के लिए जो हस्तक्रियाएं बताई गई हैं, वे क्रिया नामक प्राणानुसार बताई गई सशब्द एवं निःशब्द क्रियाओं से पूर्णतः अलग हैं। इन तालों के लघु गुरु एवं प्लुत अंग दिखाने के लिए ताली के बाद चार आठ उंगलियां ऊपर लेना इत्यादि क्रियाएं तथा काक पद के लिए एक अलग ही निःशब्द क्रिया बताई गई है। इस बारे में कुछ तर्कशास्त्रीय अनुमान नीचे दिए गए हैं। और मार्गी संगीत आध्यात्मिक उन्नति और परमेश्वर प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता था, यानी उसे हम धर्म संगीत के रूप में संबोधित कर सकते हैं। धर्म संगीत परमेश्वर की स्तुति, वर्णन, आवाहन, प्रार्थना या मिन्नत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात इस संगीत में गीतों का प्रस्तुतीकरण भावनापूर्ण रीति से आर्तता के साथ भाव भक्ति से या शरण भाव से प्रस्तुत किए जाने की अधिक संभावना प्रतीत होती है। मार्गी संगीत के गीत निबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाते होंगे और उसमें तान क्रिया, लयकारी तथा सूक्ष्म काल का गणित आदि के लिए कोई गुंजाइश संभवतः नहीं होगी, क्योंकि ताल, लय और गणित में अगर भक्त रम गया, उलझ गया, तो उसका परमेश्वर के प्रति एवं गीत के आशय के प्रति ध्यान कम हो सकता है। संक्षेप में, मार्गी संगीत के लिए ताल क्रिया सादी और सरल रही होगी। मार्गी ताल की गणन व्यवस्था भी ताली बजाकर हाथ को चार उंगलियां ऊपर लेना इत्यादि सादी और स्थूल क्रियाओं द्वारा की जाती थी, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। इस ताल व्यवस्था के लिए एक कल, द्विकल, चतुष्कल इत्यादि कलाओं की तथा चित्रा, वार्तिक और दक्षिण मार्ग की योजना द्वारा गाने की पद्धति प्रचलित होने की संभावना है, क्योंकि वह संगीत निबद्ध रूप का था। क, मार्गी संगीत की गीत रचनाएं किस लय में गाई जाती थीं, इसकी सही संकल्पना नहीं है, किंतु संभव है कि वह तीनों लयों में गाई जाती हो। ड, मार्गी संगीत में चाचपुट और चच्चतपुट ये दो मुख्य ताल हैं। उनके विषय में संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 289। चाचपुट तीसरे जाति का और छह मात्राओं का होता है, जिसके अंग गुरु, लघु, लघु गुरु होते हैं, और चच्चतपुट चतरस्र जाति का एवं आठ मात्राओं का होता है, जिसका अंग गुरु, गुरु, लघु, प्लुत होता है। निष्कर्ष, द्रुत लय के चाचपुट ताल का अंग अगर आघातबद्ध, तालीबद्ध किया तो उसमें से निर्माण होने वाला छंद मराठी दादरा अंग की आरतियों की झांझों के आघातों से निर्माण होने वाले छंद से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि चाचपुट ताल आज प्रचलित नहीं है, फिर भी उस ताल में से निर्माण हुए छंद भक्ति संगीत में टिका हुआ है। दूसरा, आज का दादरा ताल संभवतः चाचपुट से निर्माण हुआ है। तीसरा, चच्चतपुट ताल के अंग दर्शक आघात में से जो छंद निर्माण होता है वह भजनी ठेके की संकल्पना से मिलता जुलता है, इसलिए हम भजनी ठेका और उसके प्रचलित दो तीन पलटे लें। भजनी मूल ठेका, धिन धाधिन धा, धिन धातिन ता, धिन धाधिन धा, धिन धातिन ता। पलटा एक, धाधिन धाधिन धातिन तातिन, धाधिन धाधिन धातिन धातिन। पलटा दो, धाधिन धाधिन धातिन तातिन, धाधिन धाधिन धातिन तातिन। द्रुत लय में चच्चतपुट ताल का अंग दर्शाने वाले आघात से जो छंद बनता है उसी की अनुभूति हमें ठेके के पलटा एक में होती है। पृष्ठ संख्या 290। उसी प्रकार भजनी ठेके का पलटा दो का छंद मराठी आरतियों के अंत में गाई जाने वाली आरती घालीन, लोटानगण, वंदीन चरण, डोल यानी पाहिन रूप तुझे, इस आरती के छंद से पूर्णतया मेल खाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलना उचित होगा कि चाचपुट और चच्चतपुट दोनों ताल उनके अंग दर्शक तालियों से निर्माण होने वाले छंदों के रूप में आज के भक्ति संगीत में आरती और भजन के ठेकों में हमें प्रतीत होते हैं। ताल रचनाओं का प्रवास, उपलब्ध पांच मार्गी तालों के रूप निम्नानुसार है। चच्चतपुट, चाचपुट, षटपितापुत्रक, संपकवेष्टाकम और उद्घट। ब, देशी संगीत के लिए देशी ताल निर्माण हुए थे। देशी तालों की संख्या 120 बताई गई है। नमूने के तौर पर इसके 3 से 4 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। सिंह विक्रम ताल, वनमाली ताल, विजय ताल, शट ताल। पृष्ठ संख्या 291। शुरू में मार्गी तालों में और देशी तालों के प्रस्तुतिकरण में, विशेषतः उनकी हस्त क्रियाओं में फर्क होता था, किंतु आगे चलकर ये भेद नष्ट हुए। देशी संगीत और देशी ताल कालांतर में बदल रहे थे, किंतु मुगल काल में भारतीय और फारसी संस्कृति का जो संकर हुआ, उससे विशेषतः उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में लक्षणीय बदल हुआ, और उसके साथ ही उत्तर हिंदुस्तानी संगीत की ताल संकल्पना में भी परिवर्तन हुआ। फलतः एक नए नए ताल और उनके ठेके निर्माण हुए, प्रचलित हुए और स्थिर भी हुए। उनमें से चुने हुए प्रचलित ताल उनके ठेके नीचे दिए गए हैं। विविध तालों की विस्तृत जानकारी के लिए ताल प्रकाश या तत्सम ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। चुने हुए प्रचलित उत्तर हिंदुस्तानी ताल तथा उनके ठेके। भातखंडे पद्धति। ताल तीन ताल, धाधिन धिंधा, धाधिन धिंधा, धा तीन तीनता, ताधिन धिंधा। झप ताल, धीना धिन धीना, तीना धिन धीना। एक ताल, धिन धिन धागे त्रिकिट तूना, कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना। ताल रूपक, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ताल तिलवाड़ा, धा त्रिकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता त्रिकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। ताल झूमरा, धिन धा त्रिकिट धिन धिन, धागे त्रिकिट तिन, ता त्रिकिट धिन धिन, धागे त्रिकिट। ताल आड़ा चौताल, धिन त्रिकिट धिन ना तुन ना, कत्ता त्रिकिट धिन ना धिन धिन ना। ताल पंचम सवारी, धिन ना धिधिकत धिन धि ना धिन धिन ना, ती कृति ना त्रिकिट तू ना, कत्ता धिन धिन ना धि धिन ना। ताल दीपचंदी, धा धिन धाधा तिन, ता तिन धाधा धिन। ताल फरोदस्त, धिन धिन धागे त्रिकिट तिन ना, कत ता धीनक धातिरिकट धीनक धातिरिकट। ताल मत ताल, धिन तिरिकट धिन ना तुन ना, धागे न धातिरिकट। पस्तो, तिन तिरिकट धिन ताता। ताल दादरा, धा धिन ना धा तुन ना। ताल दादरा का दूसरा प्रकार, धा धिन नाधा तुन्ना, धा धिन ना धा तुन्ना। ताल कहरवा, धागे नती नक धिन। ताल धमार, क धीट धीट धा आ, ग तीट तीट ता आ। ताल चौताल, धा धा दिनता किट धा दिनता, तीट कता गदिगन। ताल तिवरा, धा धिनता तिटकता गदिगन। ताल सुर फाकता, धा धा दिनता किट धा तिटकता गदिगन। तालों का जो ठेका था, पृष्ठ संख्या 290 से 295 तक था। पृष्ठ संख्या 296। कुछ महत्वपूर्ण कायदों की बंदिशें तथा उनका विश्लेषण। कायदों की विविध प्रकार की बंदिशों की आकृति बंध और उनकी भाषा का अध्ययन करने पर हमें जिन विशिष्ट बातों का एहसास होता है, वे इस प्रकार हैं। कायदों की लंबाई निश्चित आकारों की नहीं होती, फिर भी वे कायदों के ताल स्वरूप हैं, ऐसा प्रतीत होता है। 4 मात्राओं का या 1 आवर्तन की लंबाई का कायदा दोनों को ताल स्वरूप ही माना जाता है। किसी व्यक्ति का पूर्ण पूर्णाकृति फोटो, एल्बम का फोटो और पासपोर्ट का फोटो। तीनों आकार में यद्यपि असमान हो तो भी देखने वाले को जिस प्रकार सहज ही में ज्ञात होता है कि वे फोटो एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग आकार के कायदे एक ही ताल के होने की बात वादक एवं श्रोता को ज्ञात हुई होती है। पृष्ठ संख्या 297। कायदे की जो गढ़न होती है उसका सही अध्ययन, विश्लेषण एवं विच्छेदन भी करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए धाती धागे न धा त्रिकिट कायदा नीचे तीन प्रकार से लिखा गया है। पहला है धाती धागे न धा त्रिकिट धाती धागे धीनागे न। दूसरा प्रकार है धाती धागे न धा त्रिकिट धाती धागे धीना घीना। और तीसरा प्रकार है धाती धागे ना धा तिरकिट धाती धागे धीना घीना। इस प्रकार एक ही रचना के मूल शब्दों के विभाग करके उन्हें अलग पद्धति से जोड़ने की क्रियाओं के माध्यम से तीन अलग अलग आकारों, खंडों की रचनाएं बना लें और उन रचनाओं का नए स्वरूप के कारण अलग अलग मार्गों से विस्तार किया जाए तो हमारे ध्यान में यह बात आ जाएगी कि प्रत्येक रचना के पलटे संपूर्णतः अलग ही रूप धारण किया करते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि चूंकि हमारे द्वारा शब्दों की तोड़ मरोड़ न की जाने से नए मार्गों से जो पलटे बनेंगे वे साहित्यिक भाषा में सजे होंगे। जब ऐसे नए और सुंदर पलटे बनते हैं तब कहा जाता है कि उस रचना विस्तार को प्रतिभा का स्पर्श हुआ है। तीसरा, ताल के जो खंड होते हैं ठीक उसी के अनुसार कायदों के खंडों के रूप नहीं होते। कई लोगों की ऐसी अपेक्षा होती है जो वस्तुतः गैर वाजिद है। गाने की बंदिशें भी यथातथ्य ताल के अनुसार होती ही नहीं। ये सब बंदिशें अगर ताल के खंड दर्शाने लगी तो वह संगीत एकरस होगा।